संतप्त मानस शांत हैं, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। गाथा नंबर 47 चलेगी। ये सर्वज्ञता के अभिनंदन की गाथा है। इसकी उत्थानिका में ऐसा लिखा है कि 47वें एम प्रकरणगत विषय का अनुसरण करते हुए एक बार फिर अतीन्द्रिय ज्ञान का सर्वज्ञता के रूप में अभिनंदन करते हैं। दो बातें ऐसे महत्वपूर्ण हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान का और सर्वज्ञता के रूप में अभिनंदन करते हैं। तो जब उन्होंने शुरू किया था तो कहा था कि शुद्धोपयोग के फल में अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, इसलिए उन्होंने पहले शुद्धोपयोग अधिकार, फिर बाद में ज्ञानाधिकार और उसके बाद में सुखाधिकार, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख शब्द का प्रयोग किया था। और अतीन्द्रिय ज्ञान सर्व पदार्थों को जानने वाला होने से उस सर्वज्ञता की उसमें मुख्यता आ गई। अपने आत्मा को जानता है, इसमें तो किसी को शंका आशंका है ही नहीं, लेकिन सारे लोकालोक के पदार्थों को कोई जान सकता है? पहले तो इस पर विचार करो, वो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि बोलते हैं, और फिर किसने जाना व्यक्ति विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष में सर्वज्ञता की सिद्धि करो तो विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। तो सर्वज्ञता की तरफ अपना ध्यान ज्यादा चला गया था। अब वे एक बार फिर याद करते हैं कि अपन ने तो अतीन्द्रिय ज्ञान की बात शुरू की थी। तो कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान को का हम अभिनंदन करते हैं, लेकिन वो कैसे? सर्वज्ञता के रूप में, क्योंकि वो सबको जानता है। ये ऐसा विषय है कि सारा न्याय शास्त्र का 60-70% हिस्सा सिर्फ एक सर्वज्ञता की सिद्धि में लगा हुआ है। दो ही चीजें बहुत प्रमुख हैं, एक ईश्वरवाद का विमान मीमांसा। जब परमत के खंडन मंडन की बात आती है तो ईश्वर जगत का कर्ता है कि नहीं है, इस पर पूरा ध्यान जाता है। और जब अपने मत के मंडन की बात आती है तो सर्वज्ञता पर पूरा ध्यान केंद्रित होता है कि वो सबको जानते। यद्यपि हमारा ध्यान ऐसा जाता नहीं है कि सर्वज्ञता में क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वो उसकी शब्दावली में ही अत्यंत स्पष्ट है कि आत्मा सबको जानता है। तो हम ऐसे तो भेद करते कि अपने को जानता है कि पर को जानता है, तो वो कहते नहीं सबको जानता है। सबको जानने का मतलब अपने को और पर को दोनों को जानता है ना। फिर उसने वो निश्चय व्यवहार लगाए, कुछ भी करे जो भी किया, तो फिर उसका नाम फिर भी आत्मज्ञ नहीं रखा, सर्वज्ञ ही रखा। क्योंकि सर्वज्ञ शब्द ऐसा है कि हम आत्मा को जानने का बोलते तो पर पुद्गल को जानने की बात करते, हम स्व को जानने की बात करते तो पर को जानने की बात करते, लेकिन सर्व में तो स्व और पर दोनों ही आ गए ना। तो कहते हैं कि वो अतीन्द्रिय ज्ञान ही सबको जान सकता है। यदि पिछली गाथाओं में अभी हम ध्यान दें और थोड़ी आगे वाली गाथाओं पर भी ध्यान दें तो हमें यहां स्पष्ट ये बात आएगी। अभी दो गाथाएं ऐसी आने वाली हैं कि जिसमें ये कहा है कि जो एक को नहीं जानता, माने स्वयं को नहीं जानता पूरी दिव्यगुण पर्याय से, वो सबको नहीं जान सकता। और जो सबको नहीं जानता, ध्यान से सुनना भी, वो अपने एक आत्मा को भी नहीं जान सकता। अब ये तो हमारे अध्यात्म के एकदम विरुद्ध पड़ती है, सबको जानना तो व्यवहार है और उसे जानने का तो निषेध करते हैं हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है ना। और अब कहते हैं जो सबको नहीं जानता तो वो आत्मा को भी नहीं जानता है, फिर तो ये कहते सबको नहीं जानता और आत्मा को ही जानता है। तो एक आत्मा में ये बात सिद्ध की है और बस उसकी चाबी ज्यादा कठिन नहीं है कि जब एक द्रव्य की तीन काल की पर्यायों को जान लेगा, तीन काल के कितने समय है, अनादि काल से लेके अनंत काल तक, तो वे अनंत समय है ना, और वो अनंत ही पर्याय है। तो एक आत्मा को जाना, उसके अनंत गुण, असंख्य प्रदेश, अनंत गुण, अनंत अनंत पर्याय जानी, तो पूरी बारीकी में चला गया। तो सब द्रव्यों में तो ऐसा ही है ना कि हरेक के प्रदेश हैं, किसी का एक होगा, किसी के असंख्य होंगे, किसी के अनंत होंगे, लेकिन और सबके में अनंत गुण हैं और सबकी पर्याय तो वही अनंत अनंत है एक सी। तो जब एक की बारीकी में जान लेगा तो वो सबको जान लेगा। जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है वो भी सबके हार्ट को थोड़ी देखता है, जब वो सीखता है तो एक हार्ट को देखता है, एक हार्ट का ऑपरेशन करना सीखता है, बहुत बारीकी से उसको ही देखता है। तो उसे ऐसा विकल्प नहीं आता कि नहीं 10-20 तो देखूं, ऐसा विकल्प नहीं आता है, क्योंकि वो जानता है कि सभी हार्ट 99% ऐसे ही होंगे कि बाईं तरफ ही होंगे, इतने बड़े होंगे, इतने आकार के होंगे, उसमें इतने वो जो भी हैं चैम्बर होंगे, उनमें खून कैसे जाता है। एक बात समझ ली तो सारी दुनिया की बात सब समझ ली ना, एकम जानति सर्वम जानति, जो एक को जानता है वो सबको जानता है। तो वो ऐसे ही कहते, एक द्रव्य को पूरी बारीकी से जान लिया, पूरी बारीकी माने उसके असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, और एक एक गुण की एक एक समय में एक एक पर्याय, तो जितने तीन काल के समय हैं उतने एक एक गुण की पर्याय है। तो इतना वो जान लेगा तो सभी द्रव्य की ऐसी ही पोजीशन है, तो वो सबको जान लेगा। श्रुत ज्ञानी भी श्रुत केवली भी जैसे ही जान लेता है ना, केवल ज्ञानी तो मान लो शायद सीधा प्रत्यक्ष जान लेता है, तो श्रुत ज्ञानी तो ऐसे ही जानता है ना, वो हार्ट का विशेषज्ञ हो जाता है ना। एक डिलीवरी कराना अच्छी तरह से किसी महिला को आ जाए, करा दे तो हजारों डिलीवरी करा सकती है, वो सब एक सी ही होती हैं। हर बच्चे की मां के पेट में जो हालत होती है तो एक महीना में कैसी होती है, तो सबकी लगभग एक सी होती है, दो महीना में कैसी, तीन में कैसी, चार में कैसी, ये तो हर महीने की नहीं हर दिन की भी नक्की है। जो बहुत बारीकी से जानने वाले हैं वो उसको भी जान सकते हैं। अब ऐसा नहीं, अब सौ को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही मां के गर्भ को एक एक दिन रोजाना का देखने की जरूरत है, वो किस तरह विकसित होता है, कल में है ना। तो ऐसी कथा आने वाली है, इसे आत्मज्ञता से सर्वज्ञता और सर्वज्ञता से आत्मज्ञता की सिद्धि जिनके आधार पर करेंगे। अब ये गाथा तो जैसे कहते हैं सर्वज्ञता का अभिनंदन करते हैं, समय सार में पूरा संवर अधिकार है, उसमें ऐसा लिखा है क्या बोलो, जब भेद ज्ञान का अभिनंदन करते हैं। अब उसमें जितने भी कलश हैं, अब उन कलशों का पद्यानुवाद आप पढ़ो और फिर देखते जाओ, आदि से अंत तक प्रत्येक कलश में भेद ज्ञान की ही चर्चा होगी। बस मतलब वो संवर अधिकार भेद विज्ञान का अभिनंदन है। अब संवर का भेद ज्ञान से संवर शुरू होता है, समर का आरंभ भी भेद विज्ञान से ही होता है ना, इसलिए पढ़ो गाथा। जम
यम तक कालिये मिदिरम जारद जुगवम समंत दोसवम अत्थम विचित विषमम तम नाड़म खायम भरियम ज्योतात कालिक अतात कालिक विचित्र विषम पदार्थ को चौर से एक साथ जाने वही एक ज्ञान है।
अब देखो वहां कहा था कि अतीन्द्रिय ज्ञान का अभिनंदन करते हैं और सर्वज्ञता के रूप में, और गाथा में ना अतीन्द्रिय शब्द ज्ञान का की नाम उल्लेख है और ना सर्वज्ञता का। उनने उत्थान का लिखी उसमें वो बात लिखी जो गाथा में उल्लेख नहीं है। यहां तीसरा ही नाम है, क्या है? वही छायक ज्ञान है। यहां छायक नाम का शब्द का उपयोग किया है, इनने छायक शब्द देखकर उसको अतीन्द्रिय ज्ञान और सर्वज्ञता की बात निकाली अमरचंद्र ने, और कहा कि सर्वज्ञता का अभिनंदन करते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान के रूप में, और यहां कहते हैं कि वही छायक ज्ञान है। चार विशेषण दिए हैं, तात्कालिक, अतात्कालिक और विषम, और ये क्या है, विचित्र। विचित्र शब्द तो ये बताता है कि ये अनेक अनेक द्रव्य है ना, और अनेक प्रकार के हैं। मैंने बताया था विचित्र शब्द का अर्थ, इसके वो फोटो के उदाहरण देके बताया था ना, कोई भी चित्र बनाना हो तो कम से कम दो कलर चाहिए, दो कलर नहीं होंगे तो चित्र नहीं बनेगा। आपको हम एक कलर से बना सकते हैं, है ना? एक कलर से बनाओगे ना तो एक कलर तो जिस स्याही से तुम बनाओगे वो, और एक कलर वो कागज का कलर, तब वो चित्र आएगा। कोई कागज के ही कलर की स्याही लो और बनाओ तो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, समझ में आएगा? तो उसमें दो रंग हो गए। तो हर चित्र में कम से कम दो रंग होते हैं, जिसे हम ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं ना, वो भी चित्र है, उसको भी चित्र कहते हैं। यदि नहीं होते दो कलर तो चित्र नहीं कहते उसे, चित्र माने अनेक होता है, तो एक नहीं उसका नाम अनेक। तो दो से ही अनेक शुरू हो जाता है ना, अनेकांत में तो उन्होंने पढ़ा होगा ना। तो अब तो दो कलर हैं, फिर माने द्रव्य अनेक प्रकार के हैं, माने एक नहीं है, अनेक दो भी तीन भी चार भी पांच भी छह भी बेसब हो सकते। फिर चित्र माने अनेक, और अनेक प्रकार, अब ये प्रकार वर्ड लगाया, अनेक है द्रव्य अनेक प्रकार के, दो दो हो गए, दो समझ गए ना, द्रव्य भी अनेक हैं और वो द्रव्य अनेक प्रकार के हैं, एक एक द्रव्य भी कई प्रकार का है। जैसे आकाश एक द्रव्य है, फिर वो भी लोकाकाश और अलोकाकाश दो प्रकार का है, फिर जीव भी है ना एक द्रव्य है, एक छह द्रव्यों में एक है ना, फिर भी वो अनंत जीव है, फिर कुछ भव्य हैं कुछ अभव्य हैं कुछ संसारी हैं कुछ मुक्त हैं, फिर वो अनेक प्रकार के हैं। तो विचित्र शब्द एक है, अनेक प्रकार के अनेक द्रव्य, समझ गए ना। वो विषम माने सम तो ऐसे कि एक से, लेकिन विषम माने एक से दूसरा उल्टा, जीव से अजीव उल्टा, धर्म द्रव्य से अधर्म द्रव्य उल्टा, आप समझे ना, विरुद्ध। तो ये दो शब्द हैं विषम और विचित्र, माने अनेक प्रकार के अनेक पदार्थ, और वे सम और विषम दोनों प्रकार के। ऐसे सभी पदार्थों की अब कहते हैं तात्कालिक और अतात्कालिक। तात्कालिक माने वर्तमान की, और अतात्कालिक माने भूत की और भविष्य की। तात्कालिक और अतात्कालिक सभी पर्यायों को, चार विचारों का विशेषण हो गया ना, के सभी पर्यायों को जो युगपद एक साथ समंत तो चारों तरफ से सबम सबको जानता है उस ज्ञान को चाहे ज्ञान कहते हैं। आया ना समझ में, एक एक शब्द का अर्थ हो गया ना। देखो जो तात काल
पदार्थ को चौं ओर से एक साथ जाने वही सहायक ज्ञान है।
तो जानने की जो प्रक्रिया है वो भी इसमें डाली छायक ज्ञान की, अपने सूक्ष्म ज्ञान जैसी नहीं है। देखो कि जो अभी कहां से जो विचित्र विषम पदार्थों को उनकी भूत भविष्य वर्तमान काली पर्यायों के साथ जानता है। तो विचित्र माने अनेक प्रकार के अनेक पदार्थों को और विषम माने असमानता लिए हुए ऐसे पदार्थों की जितनी भी भूतकाल की और वर्तमान काल की और भविष्य काल की पर्याय हैं उन सबको चहुं ओर से माने फोर एंड वाइड चारों ओर से जानता है और एक साथ जानता है उसी ज्ञान को छायक ज्ञान कहते हैं। एक वो शब्द आता है भगवान के समूषण के लिए, भगवान के लिए आता है, देवसास गुरु पूजन थी ना पुरानी, उसकी जयमाला में आता है एक पंक्ति आती है एक मुख चारित्र भाषित त्रिजग मां ही प्रधान है। एक मुख चारित्र भाषित सबने कहते एक एक जिनका मुख है और वो चारों ओर से दिखाई देता है तो कहते हैं चतुर्मुखी भगवान, लोग ऐसा कहते हैं। तो सोनगढ़ में पंडित रामजी भाई थे, बहुत बड़े वकील थे वो, तो गुरुदेव के पास में आकर के आत्मकल्याण की भावना से उन्होंने अपनी जिंदगी का उत्तरार्ध पूरा बिताया तो 104 वर्ष की होकर मरे गए। लेकिन 50-60 वर्ष वो सोनगढ़ में रहे अपना धंधा पानी छोड़कर। बहुत विद्वान थे लेकिन तार्किक थे ना, वकील थे नहीं थे। तो वो कहते थे कि एक क्या करे एक मुख चारित्र भाषत, तो उन्होंने लगाया कि जिस जिनवाणी में एक मुख चारित्र को ही कहा है, भाषत माने कहा वो भाषत तालब दिशा वाला साने एक होता ना भाषत में पाका बना के बनाते क्या बोलते दंती सा जो भी बोलते होंगे वो सा नहीं था, उसमें फर्क पड़ता है। क्योंकि कहते एक मुख जिन्होंने एक मुख चारित्र कोई माने निश्चय चारित्र कोई चारित्र कहा है, व्यवहार चारित्र को चारित्र ही नहीं माना, ऐसा वो अर्थ करते थे। तो कह रहे आप तुम सुना जे एक मुख चारित्र भाषत, तो मुख का कर दिया मुख और भाषत का कर दिया भाषत और लोगों ने ऐसे कहे कि चतुर्मुखी है भगवान, चतुर्मुखी है। लेकिन मैंने कहा मैंने बापू जी बोलते थे सब लोग, हम सब साथ में ही काम करते थे, यानी मुझे उनके साथ भी काम करने को मिला है जिनके बेटे मेरे से 10 से बड़े उम्र में बड़े थे, 43 वर्ष बड़े तो मेरे से गुरुदेव ही थे, तो उनसे 10 वर्ष बड़े रामजी भाई होंगे, मैंने 50-55 वर्ष पुराने लोगों से के साथ काम किया। तो हम बापू जी करके बातचीत करते थे। मैंने कहा बापूजी ये अर्थ नहीं है इसका, तो क्या है तुम बताओ। मैंने कहा उनका एक ही मुख है, चार मुख नहीं है, लोगों ने चार भाषा, एक ही मुख है लेकिन वो चारित्र माने ना तो जो संयम वाला चारित्र है और ना वो चार वाला चारित्र है, तो ये कौन सा चारित्र है, फोर एंड वाइड
चारों ओर से। इस चारित्र का अर्थ क्या है दादा? चहुं ओर से, चहुं ओर से इसमें आया ना, चहुं ओर से एक साथ, तो चारों ओर से भासत माने दिखाई देता है। उनने क्या अर्थ बना दिया था? भासत माने कहा है, वो भासत दिखाई देने के अर्थ में है कि जो जिनका है तो एक ही मुख समोषण में बैठे बिराजे हैं, लेकिन वो जितने श्रोता होते हैं चारों तरफ बैठे हैं तो हरेक को ऐसा लगता है कि मेरी तरफ ही देख रहे हैं भगवान, वो मेरे से ही ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल इसको ऐसा लगता है। तो उसको फिर सतर्कता भी अच्छी रहती होगी, यदि मेरा ध्यान किसी व्यक्ति विशेष में ज्यादा रहे तो वो ज्यादा सतर्क होकर बैठता है ना, और बाकी जिनको समझते मेरी तरफ तो देखते ही नहीं है तो अपने आराम से सोते रहते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। जिनको एक दफे टोक दो, अपन टोक दो माने ऐसा ही नाम ले लो किसी बात को पूछ कर, ऐसा नहीं कि तुम सो क्यों रहे, ऐसा नहीं, टोकने का मतलब बस सिर्फ नाम ले दो तो वो सतर्क हो जाता है। तो हरेक को ऐसा लगता है भगवान के संभोषण में, तो जो है एक मुख पर चारित्र माने चारों ओर से हरेक को ऐसा लगता है कि मेरी तरफ कोई आगे पीछे नहीं है संभोषण में, ऐसा नहीं मैं पीछे बैठा हूं जे आगे बैठा है और जे इसकी तरफ देख रहे हैं और मेरी तरफ तो देखते ही नहीं है, हरेक को लगता है कि मेरे तरफ देख रहे, तो ऐसा लगता है भगवान जो कुछ कह रहे हैं वो मेरे से ही कह रहे हैं। तो जब भाई ये मालूम पड़ता है कि इतना बड़ा आदमी तो मेरे लिए ही ये कह रहा है तो वो आदमी बहुत प्रभावित होता है, फिर वो गारंटी से उनकी बात को मानता ही है, मेरा मतलब समझे ना, बहुत अधिक प्रभाव उस बात का पड़ता है। तो एक मुख चारित्र भाषक, तो ये वो जो चहुं ओर जो यहां शब्द है ना अपन कि कहां गए वो अपन चहुं ओर से एक साथ जाने वही छायक ज्ञान है, वे चारों ओर से एक साथ जानते हैं, वे चार मुंह हैं और चार तरफ और आठ आंखें हैं, एक आंख इधर है, एक आंख इधर है, एक इधर है, अलग अलग देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सर्वांग ही शरीर से कुछ मतलब ही नहीं है, और सारा आत्मा में केवल छायक ज्ञान हो गया है और वो बिना किसी बाधा के चारों तरफ देखता है, समझ रहे ना। वस्तुता देखो अभी ये बहुत सरलता से अपन ने इसका अर्थ समझ लिया, अभी इसको आगे कुछ भी अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा महसूस करता हूं, फिर भी मैं टीका पढ़ के सुना रहा हूं, कभी कभी सरल बात कठिन कैसे हो जाती है सिर्फ ये बताने के लिए बात क्या है कि छाये ज्ञान माने सर्वज्ञ भगवान चारों ओर से सभी पदार्थों को एक साथ देखते हैं, चाहे वो अनेक प्रकार के हों, चाहे विभिन्न प्रकार के हों, चाहे वे एक दूसरे से विषम हों, चाहे विचित्र हों, जैसे भी हों उन सभी पदार्थों को एक साथ जानते देखते हैं, ऐसी उनकी विशेषता है। तो उनका ये स्वरूप बताया, यही उनका अभिनंदन है, अभिनंदनों की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे स्वरूप को बताना उसका ही नाम अभिनंदन करना है। बात पूरी हो गई, अब देखो अपन टीका पढ़ते हैं। वस्तुतः जिनके पृथक रूप से बर्तते हुए सुलक्षण रूप लक्ष्मी से आलोकित अनेक प्रकारों के कारण विचित्रता प्रकट हुई है। देखो ये काय का अर्थ है, विचित्र शब्द जो है गाथा में उसका अमृतचंद्र ने ये डेढ़ लाइन में अर्थ किया है। क्या किया देखो डेढ़ लाइन में अर्थ, आपने वो तो पढ़ी होगी ना 71वीं गाथा, आपने पढ़ाई होगी, एक हूं शुद्ध हूं निर्मम हूं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, तो उसमें आता है ना मैं आत्मा प्रत्यक्ष अनादि अनंत, आता है ना पूरा वाक्य, डेढ़ लाइन की पंक्ति आती है और इसलिए मैं एक हूं, सकल कारक चक्रियो पितृत्तीर्णत्वात् शुद्धम, मैं सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार हूं इसलिए शुद्ध हूं, पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है क्या ऐसे वन राग देश का के रूप नहीं परिणमता हूं इसलिए निर्मम हूं, आया ना। तो एक 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 पंक्ति में एक एक शब्द का अर्थ आया ये यहां कि जिन में पृथक रूप से वर्तते हुए सुलक्षण, कि जितने भी पदार्थ हैं ज्ञेय पदार्थ उनका अलग अलग लक्षण है, यानी वे पदार्थ अलग अलग हैं और अलग अलग लक्षण है माने उनमें भी अलग विभिन्न हो गए, वो विभिन्न प्रकार के हो गए ना, हर एक की परिभाषा अलग अलग है। तो कहते हैं जिनमें पृथक रूप से बढ़ते हुए स्वलक्षण रूप लक्ष्मी, माने वो अपने लक्षण से लक्षित हैं, वही उनकी लक्ष्मी है, वही उनकी संपत्ति है, उससे आलोकित जो अनेक प्रकारों के कारण जिसमें विचित्रता प्रकट हुई है। यानी इन्हें विचित्र क्यों कहा, जो मैंने अर्थ बताया था ना, वे अनेक हैं और अनेक प्रकार के हैं, ये उनकी विचित्रता है। यही बात इसमें कही है उन्होंने कि पृथक पृथक उनके लक्षण हैं, पृथक पृथक हैं, अनेक प्रकार के हैं, ये विचित्रता है। विचित्रता मैंने कोई आश्चर्यजनक बना ऐसा अर्थ नहीं है। देखो चित्र माने अनेक होता है, जो मैंने अभी हाल बताया था पहले, मेचक माने भी अनेक होता है। वो तो चार गाथा चार कलश है ना, मेचका मेचकत्यो, तो मेचक माने भी अनेक होता है और अमेचक माने एक होता है, हैं? चित्र माने भी अनेक होता है, विचित्र माने विभिन्न प्रकार के अनेक है ना, और परस्पर विरोध से उत्पन्न होने वाली असमान जातीयता के कारण वैषम्य प्रकट हुआ है। उन्हें विषम क्यों कहा, कि परस्पर विरुद्ध असमान जातीयता, वे समान जाति के नहीं है, समझे ना, असमान जाति के हैं, क्योंकि परस्पर विरुद्ध जातियां हैं, वो एक जड़ है एक चेतन है, ऐसी है ना, खुदगल जड़ है जीव चेतन है, तो इनके कारण जिनमें विषमता पैदा हुई है, माने वो विचित्र और विषम पदार्थों को जानते हैं, मन प्रय ज्ञान के स्वरूप में आप जानते हैं ऋजुमति और विपुलमति में क्या अंतर है। ऋजुमति तो उसे कहते हैं कि सामने वाले के मन की बात जाने, और वो सीधा सच्चा आदमी है, अपने शांति से बैठा है और जो सोचना है वो सोच रहा है, और हमने उसे जान लिया कि क्या सोच रहा है। लेकिन वो कुटिल हो बदमाश हो और छल करे और बात को छिपाने की कोशिश करे, अंदर में तो बहुत तकलीफ है और बाहर से मुस्कुराए, ख्याल में आए ना, प्रसन्नता दिखाए, ऐसे होते कि नहीं होते, कई बाहर से बहुत दुख ऐसा दिखाते हैं जैसे किसी की तेरही में आए हूं ना, तीये में आए हूं, और अंदर से कुछ नहीं है, कोई भाव नहीं है, तो उसको नहीं जान पाता है। वो विपुलमति सबको जान लेता है, कुटिल से कुटिल आदमी हो तो उसके मन की बात भी जान लेगा, और ऋजुमति नहीं जान पाता है। तो अब ये कहते केवल ज्ञान को किनको जानेगा, ऋजुमति जैसा है कि विपुलमति जैसा, ये बताने के लिए विचित्र विषम ऐसे अनंत पदार्थ और उनके अनंतानंत गुण और उनकी पर्याय और तात्कालिक और अतात्कालिक, इन सभी को जो एक साथ जाने उस ज्ञान को छायक ज्ञान कहते हैं, केवल ज्ञान कहते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। एक गाथा का अर्थ है, देखो पढ़ रहे थे ना मैं, समय प्रकट ऐसे भूत भविष्य और वर्तमान में बरतते हुए समस्त पदार्थों को वह छायक ज्ञान सर्वात्म प्रदेशों से एक समय में ही जान लेता है। है ना, सर्वात्म प्रदेशों से माने ऐसा नहीं है कि वो अपने आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, ऐसे कान लगा के सुनते हैं ना, आंख से देखते हैं फाड़ फाड़ के, ऐसा नहीं है। वो तो आत्मा का जो असंख्य प्रदेश है वो सबसे सीधा जानते हैं, सब जगह ज्ञान एक सही है, चारों ओर से जानते हैं, माने उनको पीछा जानने के लिए ऐसी गर्दन नहीं घुमानी पड़ती। अब उनको तो नहीं घुमानी पड़ती और वे ऐसे बैठे हैं, तब पीछे वालों को तो अब नहीं दिखेगा, उन्हें तो भले ही पीछे भी दिख रहा है, लेकिन पीछे वालों को ऐसा लगना चाहिए ना, इसलिए इंद्र ने ऐसी व्यवस्था की कि आपको भी ये लगे कि हमारी तरफ ही देख रहा है, ख्याल ना, ऐसा वो इंद्र की व्यवस्था है, वो एक समय में ही जान लेता है। वह छाया ज्ञान क्रम प्रवृत्ति की है। अब ये उल्टी बात कह रहे हैं, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान जो है वो छाया ज्ञान की टक्कर में क्यों खड़ा नहीं होता, माने उसकी क्या हैसियत है छाया ज्ञान के सामने, क्षयोपशम ज्ञान की क्या हैसियत है, ये बात बता रहे। छाया ज्ञान क्रम प्रवृत्ति की हेतुभूत क्षयोपशम अवस्था, वो क्षयोपशम अवस्था कैसी है, क्रम से प्रवृत्त होती है, कल इसको जानेगी फिर इसको जानेगी फिर इसको जाने। और छाया की अवस्था कैसी थी, युगपद प्रवृत्ति, ऊपर लिखा होगा युगपद, मन छायक अवस्था एक साथ प्रवृत्त होती है और क्षयोपशम अवस्था क्रम से प्रवृत्त होती है। ऐसे रहने वाले ज्ञानावरणी कर्म पुद्गलों किया अत्यंत अभाव होने से तात्कालिक अतात्कालिक पदार्थ समूह को समकाल में ही प्रकाशित है। तो छायक ज्ञान की बात है ना, ये छायक ज्ञान, ये छायक ज्ञान अभाव होने के बाद तात्कालिक अतात्कालिक पदार्थ समूह को समकाल में प्रकाशित करता है, ये तो ऐसा बात कहे। अब उसका उल्टा क्या था, क्रम प्रवृत्ति की हेतुभूत जो क्षयोपशम अवस्था, उसमें रहने वाले जो ज्ञान बरणी आदि कर्म पुद्गलों का अत्यंत अभाव होने से, क्या जो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम में होता था ना, और जिससे क्षयोपशम ज्ञान होता था, तो उसमें जो बे कर्म पुद्गल थे, बे उदय वाले और क्षयोपशम वाले, ये दोनों कर्म पुद्गल का अत्यंत क्षय हो गया है ना। बीच में जो क्षयोपशम की बात आई ना, वो तो ये बताने के लिए क्षयोपशम में वाली जो कमजोरियां थी वो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको तो वो ज्ञान क्षयोपशम था और इनको उनका क्षय हो गया है, इसलिए प्रकाशित करता है। अब वह सर्वशुद्ध छाये ज्ञान, देखो एक अधिकार अंतिम अधिकार समय सार का क्या है, क्या नाम है उसका, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में जितने भी पंडित हैं सब वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो ज्ञान स्वभावी वो लेते हैं कमा, यहां तो सर्वशुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान को सर्वशुद्ध ज्ञान कहते हैं, इसमें तो क्लियर है ना, यहां तो वहां की जब आगे वहां निपटेंगे, लेकिन ये ही है देखो, वह सर्वशुद्ध छाये ज्ञान प्रतिनियत प्रदेशों की विशुद्धि का सर्वशुद्धि में डूब जाने से सभी पदार्थों को सर्वात्म प्रदेशों से प्रकाशित करता है। क्या कह रहे हैं, तो वही बात है, कहते हैं कि जो क्षयोपशम था ना, तो उसमें प्रतिनियत प्रदेशों में वो विशुद्धि विद्यमान थी, जहां जहां जैसे होता ना इंद्रियादिक का, वहां वहां वो क्षयोपशम भाव रहता था, अथवा क्षयोपशम भाव का प्रतिनियत ऐसा था कि आंख होगी तो दिखाई देगा, कान होंगे तो सुनाई देगा, ये यंत्र है तो वो हमारा ज्ञान काम करेगा, कान से सुनने की हमारी ताकत है, लेकिन वो ये यंत्र होना चाहिए कान वाला, यानी कान से सुनने की ताकत है, सीधा उस आवाज को सुनने की ताकत नहीं है। धवला में एक प्रश्नोत्तर आता है, वो पहले मैंने तुम्हें बताया था कि ज्ञान का क्षयोपशम जैसे चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है, तो वो यहां जो आत्मा के प्रदेश हैं उन्हीं में है कि सारे शरीर में जो प्रदेश हैं उनमें है, तो किसी ने कहा कि प्रतिनियत प्रदेशों में है, जैसे अभी ये आई बात कि यहां के जो प्रदेश हैं उन्हें जाने, क्योंकि यहां के प्रदेशों में होता तो हमें यहां इससे जानने लगते, समझिए ना। तो उसमें लिखा है कि ये आत्मा के प्रदेश बीच के आठ प्रदेशों को छोड़कर 24 घंटे ऐसे घूमते रहते हैं, बहुत तेजी से ऐसे घूमते हैं। तो ये जो अभी आंख में प्रदेश हैं, वे अगले समय न मन यहां हाथ में होंगे, पैर में होंगे, कहां होंगे, माने सब जगह के प्रदेश
सब जगह जाते आते रहते। तो यदि प्रतिनियत प्रदेशों में ही क्षयोक्षम हो तो वो आत्मा हर समय जान नहीं सकता। फिर वे जब प्रदेश धर आएंगे और आंख मिलेगी तब जानेंगे। तो उससे उनने ये सिद्ध किया कि संपूर्ण प्रदेशों में वो क्षयोक्षम होता है। अब ये प्रश्न खड़ा हो गया कि वो क्षयोक्षम में एक क्वालिटी है, कौन सी? कि वो जहां आंख होगी उनसे ही जानेगा रंग को, कान होगी शब्द को उनसे ही सुनेगा। ये यंत्र उसके होना चाहिए, ये उसकी शर्त है। तो वो सिद्धांत तो जो है ना, तुम्हारा बच्चा देख लेता है वो ऐसा छू छू करके देख लेता है ना, काला है, नीला है, पीला है। अब इसमें पहली बात तो हमारी बैठ गई, क्योंकि वो चक्षु इंद्रिया बहन का क्षयोपम सब जगह है, इसलिए वो जान सकता। लेकिन वो क्षयोपम की क्वालिटी है कि वो आंख होना चाहिए ना, वहां तो आंख पे है नहीं है। मानो वो पूरा उस हिसाब से बैठा गया नहीं। अब जान लेता है तो जान ही लेता है। अब क्या है अपने जैन धर्म के हिसाब से उसमें क्या है और वस्तु का स्वरूप क्या है, वो अलग अलग सोचने की बातें हैं। लेकिन अपने जो शास्त्रों में पढ़ा है उससे अपन मिलान तो करते ही है ना, कि कहां वो सेठ हुआ और कहां वो सेठ नहीं होता है। कोई भी बात जो अपने सामने आई है उसके आधार पर। तो क्या बात चल रही है अपने पढ़ रहे थे? सर्वशुद्धि छायक ज्ञान, प्रतिनियत प्रदेशों की विशुद्धि का सर्वशुद्धि में डूब जाने से, क्योंकि वो क्षयोपम ज्ञान था ना, तो उस वक्त प्रतिनियत प्रदेशों में विशुद्धि थी, समझ में आ रहा, सुनिश्चित सब में नहीं थी। अब वो चूंकि प्रतिनियत प्रदेशों की विशुद्धि मिट गई, तो फिर वो उतनी विशुद्धि मिट गई तो अशुद्धि हो गई होगी कि नहीं, सर्व विशुद्धि हो गई, तो वो उसमें समा गई। माने क्षयोपम ज्ञान कह रहे छायक ज्ञान में समा गया। दो अपेक्षाएं हो गई, एक क्षयोपम ज्ञान खत्म हो गया और छायक ज्ञान हो गया, ऐसा कह सकते हैं। और ये कहते हैं क्षयोपम ज्ञान ही छायक ज्ञान में समा गया। एक ही बात को दो तरह से कह सकते हैं, समझे? जो लिखा ना, प्रतिनियत प्रदेशों की विशुद्धि का सर्वशुद्धि में डूब जाने से। अब ये क्या सर्वशुद्धि, क्या प्रतिनियत विशुद्धि, और वक्त कौन किसमें डूब गया है, वो हमारी समझ में आना चाहिए ना, अपने आप आना चाहिए। अपने आप नहीं आया तो बता देने के बाद तो आना ही चाहिए ना, अगर आज बता दिया तो फिर कल तो आना ही चाहिए ना। तो शास्त्रियों को तो आने ही चाहिए ना, और आता भी है, ऐसा नहीं कि तुम लोगों को नहीं आता, मैं ऐसा मानता हूं है? लेकिन देखो है ना, मैंने वो कह रहा हूं, वो बात सीधी सच्ची थी कि केवल ज्ञान में छाछाई हो गया है ज्ञान वर्ण कर्म का, इसलिए पूरी विशुद्धि प्रकट हो गई है और सारा लोकालोक उन्हें दिखाई देता है। अब उसी बात को वो इस तरीके से कह रहा, एक एक शब्द को डेढ़ डेढ़ लाइन में परिभाषित करके वो बता रहे हैं। तो इसलिए वो कहते विद्यानंद जी कहते थे ना कि अमृत चंद्र ने कुंद कुंद के समय सार को दुरूह कर दिया है। दुरूह समझते हो? हाँ, कठिन, बहुत मुश्किल से समझ में आने योग्य। गुरुदेव इस बात को बार बार बहुत दोहराते थे, अमृत चंद्र ने तो खोल दिया है, हम उसनी बात को नहीं समझ पाते कि एक का अर्थ क्या है। क्या हम समझ सकते थे कि शुद्ध का अर्थ है सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार होना है, ठीक है? और कौन सी गाथा में? 73 में और 38 में, 38 गाथा में भी था, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, तो वहां कुछ दूसरा ही अर्थ है। बोलो क्या है, पढ़ तो लिया ना तुम्हें, जहां बोलो इसलिए क्या? अब मैं सुनता नहीं हूं इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तुमने ठीक ही बोला होगा। ज्ञानावरण कर्म के सर्व प्रकार क्षय हो जाने से और असर्व प्रकार के ज्ञानावरण के क्षयोपम के विलय को प्राप्त हो जाने से, देखो ये भाषा देखो, सर्व प्रकार क्षय हो जाने से और असर्व प्रकार उस ज्ञान करके क्षयोपम को
सर्व प्रकार नहीं कह के असर्व प्रकार कहा, दोनों मिल जाए ना जोड़ा, सर्व प्रकार और असर्व प्रकार। तो सर्व प्रकार तो क्षय हो गया तो सिद्धि हो गई, और असर्व प्रकार से जो हुआ वो सर्व प्रकार की विशुद्धि में मिल गई, मिल गई लिखे ना। विलय को प्राप्त हो जाने से वह अतीन्द्रिय ज्ञान विचित्र और अनेक प्रकार के पदार्थों को प्रकाशित करता है। वो विचित्र और विषम का अर्थ कर रहे हैं, ये विचित्र विषम पदार्थ को वो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकाशित करता है। ये इतनी जो मेहनत की है, ये तीन तीन लाइन है, चार चार लाइन है, विचित्र और विषम की का अर्थ करने के लिए की है। तो अब सर श्री सरल वाद कठिन कर दिया। देखो ये वो जो अमेरिका में एक डॉक्टर महावीर करते हैं, महाराष्ट्रियन है, कोई सोलापुर तरफ के हैं, उनने वो समय सार अपने 2100 समय सार अमेरिका में बांटे, तो छह डाला का सार और समय सार ये दोनों बांटे, 21 घर घर में हैं। और मैं जाता हूं दिगंबर सितंबर सभी लोग ले गए थे, तो उनके घरों में सर्वोच्च स्थान में विराजमान है समय सार। तो मुझे देख के बहुत प्रसन्नता होती है कि समय सार को यहां इतना सम्मान मिला। कि पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे ये तो वो जाने, लेकिन वो ऐसा नहीं कि चाय जहां पड़ा नहीं मिला मुझे, ऐसा ऊंचे स्थान पर रखा मिला हरेक के यहां सम्मान के साथ। तो वो महावीर जी बहुत गहराई से स्वाध्याय करते हैं। अब तो उन्होंने सब अपनी डॉक्टरी बंद कर दी बिल्कुल, और 24 घंटा पढ़ते ही हैं। तो वो कहते हैं सबको कि मैं डॉक्टर साहब का वो सबसे पहले पढ़ता हूं कि तात्पर्य आए, अंत में जो वे 5-7-10 लाइनें लिखते हैं वो सबसे पहले गाथा पढ़ता हूं और फिर वो पढ़ता हूं, और फिर पूरा ये 10-5 पेज जितने भी है ना अनशीलन में बीच में फिर उनको बाद में पढ़ता हूं। क्यों? यदि वो मैं नहीं पढ़ूं तो मेरी समझ में नहीं आता है कुछ, और उसे पढ़ लूं तो फिर मेरी समझ में सब आता जाता है। क्योंकि वो आप जानते हैं दो प्रकार की शैली होती है निबंधों की, एक समास शैली एक व्यास शैली है। पता किसी हाथ उठाओ जिन जिनको पता है, नहीं है कोई बात नहीं तो बता दूंगा। गद्य साहित्य में एक समास शैली होती है एक व्यास शैली होती है। समास शैली का मतलब यह है कि वे संक्षेप में एक वाक्य कह देंगे फिर बाद में उसको खोलेंगे, जैसे वे कहेंगे बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, अब उन्हें संक्षेप में कह दिया, फिर कहेंगे जैसे कोई पदार्थ का अचार बनाना हो या मुरब्बा बनाना हो तो उसको नमक मिर्च मसाला डाल के कुछ दिनों के लिए सड़ने के लिए रख दिया जाता है, और जब वो सड़ गल जाता है तो उसे अचार कहते हैं। ऐसे ही जब क्रोध को तत्काल प्रतिक्रिया न करके अंदर में रख लिया जाता है कि जब मौका लगेगा तब देखूंगा, और फिर वो अंदर सड़ता गलता रहता है तो उसे बैर कहते हैं। अब ये इसकी एक पद्धति कौन सी हुई? समास पद्धति। और व्यास पद्धति क्या है कि पहले वो एक ये उदाहरण देंगे कि जैसे हमने अचार बनाने के लिए किसी पदार्थ को इस तरह सड़ाते गलाते हैं फिर ऐसा ऐसा बन जाता है, उसी प्रकार ऐसा होता है ज्ञान का। तो ये जो है ना बैर क्रोध जब सलता गलता है तो बैर बन जाता है, उसे बैर कहते हैं। अंत में वो जो निष्कर्ष का वाक्य बोलेंगे तो वो दूसरी पद्धति है। तो हरेक लेखक अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करता है, और एक ही लेखक कभी किसी में समास पद्धति का प्रयोग करता है, कभी व्यास पद्धति का प्रयोग करता है। आप यदि अभी इसको अच्छी तरह समझ लेना तो जहां भी आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि समास पद्धति से काम चल रहा है कि व्यास पद्धति से काम चल रहा है। इसका एक वर्णन करने का एक तरीका है। देखो ज्ञानावरण के सर्व प्रकार क्षय हो जाने से और असर प्रकार ज्ञानावरण के क्षय उपशम के विलय को प्राप्त हो जाने से वह अतीन्द्रिय ज्ञान विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के पदार्थों को प्रकाशित करता है। विचित्र माने अनेक प्रकार की है, वसीदा सच्चा अर्थ। असमान जाति ज्ञानावरण कर्म के क्षय हो जाने से और समान जाति ज्ञानावरण कर्म के क्षयों के नष्ट हो जाने से वह विषम अर्थात असमान जाति पदार्थों को प्रकट करता है। ये विषम का अर्थ है और वो विचित्र का अर्थ है। तीन लाइनों में विचित्र का अर्थ, दो लाइनों में विषम का अर्थ। आगे समझ में भैया, मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, कल परसों भी बता दिया था, तो तुम फिर आसानी से निकल जाते हैं ना। अथवा अति विस्तार से क्या लाभ है, अभी पहले ही कह देते थे विस्तार से, अब मैं क्या कहूं, तुम इतना समझ लो संक्षेप में क्या और निष्कर्ष का बाकी जिसे बोलते हैं, इतना ही पर्याप्त है। कितना? कि जिसका अनिवार्य फैलाव है, यानी जो जिसको फैलता है तो लोकालोक में फैल जाता है, सारे लोकालोक को जानता है ना, ऐसा वह प्रकाशमान छायक ज्ञान जगमगाता, प्रकाशमान माने जगमगाता हुआ वो छायक ज्ञान का है, अवश्यमेव अवश्य ही और सर्वत्र सब जगह सर्व सभी पदार्थों को सर्वथा सर्वथा भाव की अपेक्षा है सर्वथा और सदा जानता ही है। वो चारों लगा लिए ना, सर्वत्र सदा सर्व चार है ना, सर्व सर्वथा सदा और एक और सर्वत्र मैंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों सन द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जानता है, ऐसा ये केवल ज्ञान का स्वरूप है। एक मतलब जो तत्व ज्ञान है, बात तो इतनी सी है कि केवल ज्ञान सब पदार्थों को सब ओर से सर्वदा हमेशा निरंतर जानता रहता है, कहीं कोई कमी नहीं है, इतनी सी बात है। लेकिन उन्होंने इसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया, तो हमको जब इस प्रकार में पढ़े क्योंकि मुफ्त में ही उलझा रहे, इतनी सी बात हमें एक लाइन में बता दो झगड़ा खत्म, तो फिर तुमने आत्मख्याति नहीं पढ़ी ऐसा हो जाएगा। समझिए ना, आत्मख्याति पढ़ी तो तुम इस तरकीब से, ऐसा है ना गणित की किताब में एक गणित का हिसाब लिखा रहता है और अंत में उसका उत्तर लिखा रहता है, क्यों? तो तुम्हें वो किताब में जिस विधि से वो उत्तर निकला है वो सीखना है कि बस उसे वो गणित है, हिसाब है और उसका उत्तर ये है, वे रट लो बस, क्यों? अगर वो जवाब दे ऐसे काम चलेगा? अभी तक हमारी पढ़ाई ऐसी ही होती है, जो 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 शास्त्री किए बिना जैन धर्म के विद्वान बनते हैं ना, वो ऐसे ही बनते हैं। कैसे? कि उन्हें उत्तर मालूम है और प्रश्न मालूम है, किस विधि से निकाला है वो मालूम नहीं है। जो जो तुम लोग शास्त्री बनते हो वो ऐसे बनते हो कि तुम इस विधि से निकाल सको, इससे घबराना नहीं, इसमें आनंद लेना है, इसमें मेहनत भी हो ना तो आनंद आना चाहिए, तो थकान नहीं होगी। तुम इसको कोई इसकी व्याकरण की विशेषता समझोगे, न्याय की विशेषता समझोगे, इसमें कोई फ्रेज देखोगे, अलंकार देखोगे, तो तुम्हें एक एक चीज में आनंद आना चाहिए ना। टोडम जी ने लिखा है ना, जब किसी ने कहा कि उसने छंद और अलंकारों की भाषा में लिखा है और ऐसा लिखा है और बहुत बातें ऐसी कर करके लिखी हैं, तो हमें तो बहुत दिक्कत होती है। सीधी सी क्यों नहीं कह देते कि रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा कि मैं जंगल में जा रहा हूं पिताजी की आज्ञा से, झगड़ा खत्म हो जाता। अब इतनी सी बात कहने में उनने चार पेज लगा दिए, क्यों? थोड़ी तो माताओं बहनों को तो फालतू का लगेगा ना कि चार पेज में इतनी कह पाए कि रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा कि मैं जंगल में जा रहा हूं, समझ रहे ना। लेकिन वो कहते हैं कि जो उस्ताद के जो लेखक है ना, जैसे ऐसे ही विद्वान जो पाठक होगा तो उसका मन ऐसा पढ़ने में नहीं लगेगा, ऐसी कोरी कहानी पढ़ने में उसे नहीं है। हम शत्रुचूड़ामणि पढ़ते थे उस वक्त, कोर्स में शत्रुचूड़ामणि थी, आजकल तो मेरे ख्याल से कोर्स में नहीं है तुम्हारे। तो जो शत्रुचूड़ामणि की किताब आती थी ना, तो उसके हम अंत में सारांश लिखा रहता था हर अध्याय के अंत में, तो सबसे पहले उसे पढ़ लेते थे कि इस अध्याय में क्या कहानी है, फिर उसमें 100 श्लोक आएंगे और धीरे धीरे बढ़ेगी कहानी, तो तो वो इतना धैर्य नहीं था कि वो महीना भर तक चलेगा अध्याय तो कहानी हम महीने भर बाद समझ में आएगी, हम पहले उसे पढ़ लेते थे। फिर उसमें जो भावार्थ लिखे रहते हैं ना शांति जी, तो फटाफट हरेक का भावार्थ पढ़ लेते थे, हरेक श्लोक का, क्या उसका पूरी विषय वस्तु से परिचित हो जाते थे। और फिर जब गुरु जी पढ़ाते थे तब उसका पूरा आनंद लेते थे, उसका काव्य का रस उन्हों का। ये कई छंद मुझे याद है ना धर्मशर महाविदय के, जब मैं बोलता रहता हूँ, कल सुनाया था ना एक, अहो कलश्यापिमहो पयोगा स्नेह द्रोहायत परिशीलने ने। तो ये सब छंद मैंने याद नहीं किया, हो गया, क्योंकि उसमें रस आता था कि किस तरह से किया, क्या उदाहरण दिया, कहाँ से लाए, इनने आचार्य ने कहाँ देखी थी कि गाय को खली खिलाते हैं तो ज्यादा दूध देती है, और दूध को जिस पात्र में धोते हैं तो वो पहले आधा भरता था अब वो पूरा भरने लगा है? तो उस तीर में आनंद आता, आनंद आना चाहिए, जिसे पढ़ने में आनंद आता है वो बहुत उच्च कोटि का विद्वान बनता है, जिसे पढ़ना भारभूत लगता है मैं समझ लो वो तो काम चलाऊ काम है, वो उच्च कोटि का नहीं बनेगा। जिसे पढ़ने में थकान लगती, पढ़कर थकते हो, पढ़ने में तो हमको आराम मिलता है। सोने को जाते हैं ना तो कोई किताब पढ़े बिना नींद नहीं आती, हमारी तो नींद की गोली है, क्या 10-5 पेज पढ़ेंगे तो नींद आएगी, माने हमें उसमें से रेस्ट मिलता है। आप समझते हो कि कोई कल्पना की बातें कर रहे, ऐसा नहीं है। ये जो हमारे अनावश्यक विकल्प चलते हैं चिंता के, इस जगत की चिंता के अनावश्यक, तो जब हम वो पढ़ते हैं बबलू तो वो हमारे विकल्प टूट जाते हैं। तो ये शास्त्र वाले विकल्प चलते हैं जो हमारे माथे पे बोझा नहीं है, वो विकल्प हमारे माथे के टेंशन है पैदा करते हैं, और ये विकल्प टेंशन पैदा नहीं करता, ख्याल में है ना, ये विकल्प आनंद पैदा करता है, इसलिए आनंद आना चाहिए। कहाँ है अब अपन, ये 5-6 लाने और पढ़ना है अपन को अभी। इस गाथा में अतीन्द्रिय ज्ञान की सर्वज्ञता सिद्ध की गई है ना, अपन ने जो चर्चा की है फिर वही बात लिखी है इसमें। कहा गया है कि अतीन्द्रिय ज्ञान पर की सहायता के बिना स्वयं के सर्वात्म प्रदेशों से जानता है, अक्रिम से जानता है, सभी को जानता है, भूत और भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में घटित होने वाली घटनाओं पर्यायों को अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष जानता है, क्योंकि क्रम पूर्वक जानना, नियत आत्म प्रदेशों से ही जानना, अमुक को ही जानना आदि मर्यादाएं क्षयूक्ष्म ज्ञान में ही होती हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान केवल ज्ञान में ऐसी कोई मर्यादा नहीं होती, ज्ञान की सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय में आशंकाएं व्यक्त करने वालों को इस गाथा के भाव को गंभीरता से जानने का प्रयास करना चाहिए। देखो एक पैरे में सब आ गया कि नहीं आ गया बोलो, अभी सबसे पहले तुम इसे पढ़ लोगे, मैं 5 मिनट में प्रवचन खत्म कर सकता था और सब आपको संतोष होता कि बिल्कुल पूरा समझ में आ गया, कितना साफ लिखा स्पष्ट। जैसे आप वो आते हैं ना प्रेसी प्रेसी लिखवाते हैं ना अंग्रेजी में, एक पैरा दे देते हैं इतना बड़ा एक पेज का, तो कहते प्रेसी लिखो, तो प्रेसी लिखना सिखाते हैं जब तुम्हारे अध्यापक, तो सबसे पहले कहते हैं कैसे बनाना प्रेसी, कि वन थर्ड कर देना, क्यों एक पेज में मान लो 30 लाइनें हैं तो 10 लाइनों में उसकी प्रेसी बनाना, अब वो बात पूरी आ जाए, तो 30 लाइनों में लिखी है वो बात पूरी आ जाए और 10 लाइन में आ जाए तो कैसे आएगी बात, क्यों तो 20 लाइनें हमें काटना है उसमें से, बनाना तो कुछ है ही नहीं, तो अपन ऊपर से फटाफट 20 काट दो और नीचे की 10 लाइन दे तो बन जाएगी, नहीं, एक एक लाइन में से एक एक चीज क्या कम करना और क्या नहीं करना इसका चुनाव बस वो ही जानने के लिए कि तुम इसमें चुनने में होशियार हो के नहीं है, वो प्रेसी लिखाई जाती है तुम्हारी इस योग्यता को जानने के लिए। तो क्या कम किया जाता है बोलो,
तुमने सीखा तो होगा कि जितने उदाहरण दिए हों वे कम कर दूं। आप समझे ना, उदाहरण दिए हों वे कर दो, जो रिपीटेशन हुआ हो वो कर दो। रिपीटेशन होता है ना, जैसे तुम्हारे पांच हेतु होते हैं ना, कि जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, वहां जैसे रसोई का फलाना फलाना, चूंकि यहां धुआं है इसलिए यहां अग्नि है, वो चूंकि फूंकी है ना, वो बाद में काट दो। पांच अंग मैं तीन तीन दफे दोहराने की जरूरत नहीं है, और वो उसमें से उदाहरण निकाल दो तो फिर वो बंथर रह जाएगी। अब वो मूल चीज आना चाहिए, यदि कोई मूल चीज रह गई उसमें तो तुम प्रेसी लिखने में होशियार नहीं हो। तो ऐसा ही जो प्रेसी है अभी तुम इसको, जब दादा पंचायती काय जी लिखते थे ना तो वो बात हमारी होती थी, तो मैं उनसे यही कहता था कि आप इनको इस दृष्टि से पढ़ो, इस टीका को, अनुशीलन को, कभी किस तरीके से लिखा है, क्या किया है, गुरुदेव का कोटेशन दिया है तो उसमें क्या दिया है, क्या छोड़ा है, एक बार इस दृष्टि से 10-5 पेज इसकी स्टडी करो आप, और फिर उस शैली को अपनाने की कोशिश करो, सफलता मिल जाएगी। मेरा मतलब समझिए ना, तो ऐसी स्टडी हमको करना चाहिए। तुम विद्वान बन रहे हो ना, जो जिनको अकेला सुनना ही है वो सुनने वाला धर्म करना है, एक घंटा बैठे तो उसे धर्म हो जाता है सुनने वाला, वो तो जो करें उसको करने दो, लेकिन तुम तो ऐसे नहीं बैठे हो ना, तो तुमको तो एक बारीक बात जाननी है तो वो सब जानने चाहिए। अब कल अपना 48वीं गाथा पढ़ेंगे।